अब सोल्यूशन दिया जा रहा है और यहाँ से सबक का इख्तिताम हो रहा है कि जो काम इनको कहा गया था वो तो किया नहीं, तो क्या अब इसका इलाज क्या है, किस तरीके से ये सारे मामलात हो गए। फरमाया वलौ अन्न अहलल किताबी आमनु, और अगर अहले किताब ईमान लाते, नंबर एक, वत्तकौ और डरते, तकवा इख्तियार करते, अल्लाह ताला का खौफ इनके दिलों में आता, गुनाहों से नफ़रत इनके दिलों में आने लगती, हम क्या करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो हम दूर कर देते इनसे इनकी बुराइयाँ, वला दखलनाहुम, और हम इनको दाखिल कर देते जन्नात नईम, नेमत के बाग़ों में, यानी हम इनको नेमतों वाले बाग़ों में दाखिल करते। ये है दो कामों की जज़ा। आप ऐसे अपने पे नोट्स में लाइन लगा सकते हैं कि अगर अहले किताब, नंबर एक आमनु, नंबर दो वत्तकौ, नतीजा क्या है, नंबर एक कफ़रनान हम सही आती हैं, इनकी बुराइयों को छुपा देते, यानी इनकी शॉर्ट कमिंग्स को छुपा देते, इनकी बुराइयां ख़त्म कर देते, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और दूसरी चीज़, हम इनके लिए क्या करते, अदखल ना हम जन्नाती नईम, नेमतों वाली जन्नत में डाल देते। अब इसके बाद अगला दर्जा है, वलौ अन्नहु मकामुत तौरात, और अगर वो कायम करते तौरात को, नाफिस के मानों में है कौम कवाम, और ये हकूमती सतह पर नाफिस करने के लिए आता है, यानी तौरात को कायम करना, और वल इंजील, और इंजील को, और वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम, और जो नाजिल हुआ इन पर इनके रब की तरफ से, अगर इसको नाफिस करते, यानी अपने सिनेगॉग से निकाल कर इस तौरात को लोगों की अमली ज़िंदगी में ले आते तो क्या होता। अब इसको हाईलाइट करिएगा, लअकलू मिन फौकिहिम, अलबत्ता ये खाते अपने ऊपर से, यानी आसमान इन पर रिस्क बरसाता, बारिशें होती इतनी ज़्यादा कि ये उसकी वजह से खूब रिस्क पाते, और वमिन तहती अरजुलिहिम, और अपने कदमों के नीचे से खाते, यानी इनकी ज़मीनें फसलें उगाती, इनकी ज़मीनें ऑयल निकालती, इनकी ज़मीनों में से माइंस निकलते, सोना चांदी हीरे डायमंड, मिनहुम उम्मतुम मुक्तसिदतुन, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधी राह पर हैं, कसद से, ख्वाफ स्वाद दाल, यानी जो इक्तसाद की राह में हैं, इतदाल पे हैं, अफरात और तफरीत से पाक हैं। निजाशी और अब्दुल्ला बिन सलाम वगैरह की तरफ इशारा है कि सारे ख़राब नहीं बल्कि कुछ तो बीच के हैं, लेकिन वह कसीर मिनहुम सा अमा यामलून, और बहुत से इनमें से बुरे काम कर रहे हैं, अक्सरियत इनमें से बुरे काम करने वाली है। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला ने इनको एक पैकेज दिया, और कल उनको दिया था, आज हमें दिया है, क्योंकि यहाँ अगर अकामुत तौरात अवल इंजील के आगे आप एक और लफ्ज़ लिख ले कि आज हम मुसलमानों को क्या कहा जा रहा है कि वलौ अन्नहुम अकामुल कुरान या अकामुस सुन्ना या अकामुल इस्लाम, यहाँ अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो तबाहियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो रिस्क की कमी, जो लोग भूख से मर रहे, जो प्यास से मर रहे, जो गर्मी सर्दी से मर रहे, उसकी वजह बताई कि जब ज़मीन के उन खितों पर, देखिए काफिर के लिए अल्लाह का ये असूल नहीं है, कुफार अपने मुल्क में कोई भी किताब नाफिस ना करें अल्लाह उनको कुछ नहीं कहता और देता है, बल्कि आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग सूरत अलानाम में एक आयत आएगी कि उनको तो अल्लाह रिस्क के दरवाज़े खोलता है, लेकिन अल्लाह ताला की एक सुन्नत लिख लीजिए कि जब ख़ुद को अल्लाह वाला कहने के बाद, अब इस एक लफ्ज़ के नीचे आप ब्रैकेट में लिखें, वो हुकूमत भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और वो एक इंसान भी हो सकता है। जैसे अब हम अपने आप को कुरान वाला समझने लगे, इस्लाम वाला समझने लगे, तो जब कोई ख़ुद को अल्लाह वाला कहने के बाद अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में नाफिस नहीं करता, अपने मुल्क में, अपने इदारे में नाफिस नहीं करता, ये सब फैलाते जाएं सिलसिले को, तो उसके बाद अल्लाह का इंतकाम क्या होता है कि उनकी ज़िंदगियों से, उनके मुल्कों से, उनके इदारों से बरकत छीन लेता है, रिस्क कम हो जाता है, कभी कहत साली हो जाती है, कभी खुश्क साली हो जाती है, कभी खड़ी फसलों पे कीड़े पड़ जाते हैं, कभी बिजलियां पड़ती हैं और सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। क्या आज दुनिया में ये हो रहा है? کیا آج مسلمان ملکوں کے حالات کچھ ایسے ہی نہیں ہو گئے؟ وجہ کیا ہے کہ کہا تو تھا کہ اللہ تیرا نظام نافذ کریں گے، تیرا قرآن نافذ کریں گے، لیکن ہم نے اس کو ابھی عملی طور پہ نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ لفظ اقاموں پہ غور کیجئے، نام کتاب کا ہے، کتابیں کھڑی ہوتی ہیں۔ بس آپ کہیں کہ مثال ہے کہ یہ کتاب ہے، تو اقاموں کا کہ اس کتاب کو یوں کھڑا کر دیں۔ کتاب کے ساتھ کیا لفظ آتا ہے عموماً؟ یتلون، یقرؤن۔ یہ تو نہیں کہا ولو انم یقرؤن التورات کہ بیٹھتے اور قرآن تورات پڑھتے رہتے، قرأت کرتے رہتے، اس کی تجوید سیکھتے رہتے۔ آپ اپنے اوپر لائیں اس کو، قرآن کے اوپر آج، کہ اگر یہاں یہ ہوتا کہ ولو انہم یتلون القرآن یا اس کی قرأت کرتے یا اس کی تجوید کرتے یا اس کے وظائف کرتے، تو پھر یہ اللہ کے وعدے پورے ہوتے؟ نہیں پورے ہوتے۔ اللہ کے وعدے تب پورے ہوتے ہیں جب اللہ کی کتابیں عملی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ کتابیں کو چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آئیں، یہ کتابیں زندگی کا حصہ بننے کے لیے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سلیوشن دے دیا کہ اگر کوئی اپنے ملک کی خوشحالی ختم کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے ملک کی تنگ دستی ختم کرنا چاہتا ہے، فصلیں بڑھانا چاہتا ہے، تو کیا کرے؟ بہترین قسم کے کھاد لگائے، اعلیٰ بیج امپورٹ کرے باہر سے۔ اور ظلم ہے، پہلے مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں رزق سے محروم کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ غیروں سے بھاری قیمتوں پہ ان کے وہ بیج خریدتے ہیں جو ہمارے ملک کی زمینوں کے لیے بنے ہی نہیں، اور وہ بیج خریدتے ہیں جو صرف ون ٹائم بیج دیتے ہیں، فصل پھر غائب، کیونکہ ہر سال تم ہم سے لو۔ یہ پیچھے فساد کی بات ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنی ریسرچز ہو رہی ہیں نا پلانٹیشن کے اندر، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اس پہ کوشش کرو کہ بیج بس ایک دفعہ ہو گئے، دیٹس اٹ۔ فطرت کا اصول کیا، آپ اپنے باہر دیکھیے، جو پھول بنتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بیج کی شکل میں بدل کے دوبارہ زمین میں دب جاتا ہے، اگلے سال پھر جب وہ موسم آئیں گے وہ بیج ہرے ہوتے ہیں، اگتے ہیں۔ یہی فطرت ہے، جو گندم کٹتی ہے وہ اپنا بیج دے کے جاتی ہے، وہی دانوں کو دوبارہ ڈالتے ہیں اگلے سال۔ یہ فطرت کا پروسیس ہے۔ ایک غریب زمیندار جس کے پاس کچھ نہیں، روٹی پانی ہے، وہ اپنی فصل کے تین حصے کر لے، دو حصے میں سے ایک کھا لے، دوسرا بیچ کے اپنی باقی ضروریات پوری کرے، تیسرے حصے کو اگلے سال پھر اگا دے۔ یہ فطرت کا ہے، کسی سے کوئی ایڈ، کوئی قرضہ، کچھ نہیں۔ لیکن آج بڑی بڑی طاقتوں نے مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا، اس طرح ہمارے ہاتھ باندھ دیے کہ تم وہ بیج خریدو جو صرف ون ٹائم چلتے ہیں، وجہ کیا کہ تم اگلے سال ہم سے لو۔ اور سٹرلائز ہے، کئی ایسے جانور ہیں جو بچے پیدا نہیں کر پاتے، یعنی اپنے ہاتھ میں، کچھ ہوتے ہیں نا جن کو چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز ہمارے ہاتھ میں رہے۔ یہ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں، جو لوگ ہیں اس وقت ہماری دنیا میں، اور یہ ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے ہم پہ۔ آج مسلمان کیوں مجبور ہیں؟ آج کیوں لگتا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ کہ غریب ہو جاؤ؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو ڈس آرگنائز ہو، مسلمان وہ ہے جو ناکام ہو، کیا یہ تصور نہیں آتا؟ کہاں آج مسلمانوں کی عزت، دھوڑ دھوپ ہمیں دکھتی ہے؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہی ایسے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ، کل تورات، اس سے بعد انجیل تھی، اور آج قرآن ہے۔ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ رَبِّهِمْ، میں اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کی حالت بدلے، ان کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے غیروں کی مدد سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا ہے، تو سب کو پیچھے کر دیں، نو تھینکس کہہ کے ان کی چیزوں کو پیچھے کر دیں، اور بس پھر اس کے بعد چل پڑے اللہ کی طرف۔ یقین کریں کہ آج اگر مسلمان اس ایک آیت پر عمل کر لیں، صرف ایک سال چاہیے مسلمانوں کو، آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ وہ فصلیں اپنے ملک کی خود پروڈیوس کریں گے، وہ دوسروں کو بھی دیں گے۔ کیا یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملکوں کی، اگر دیکھیں، اگر ہم غلام بنے ہوئے ہیں نا اس وقت، تو آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتہ ہماری زمینیں بھی غلام بنی ہوئی ہیں ان کی۔ کئی مسلمان ملک ایسے ہیں کہ جن کی زمینیں بک چکی ہیں غیروں کے ہاتھوں، وہاں لوگ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بڑے اچھے ٹماٹر لگے ہوئے ہیں، بڑے اچھے خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں، ہائے پکنے والے ہیں، پر وہ وہاں سے ایک نہیں توڑ سکتے، راتوں رات پیک ہوتا ہے، وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر۔ آپ کے ملک میں ٹماٹر بکے گا مجھے نہیں پتہ کتنے کا، 50-60 روپے کلو ہوگا، وہ 5-6 روپے کا ہوگا، وہ باہر کے ملکوں میں جا کے آپ کھائیں گے، اپنے میں نہیں کھائیں گے۔ آپ نے ایک معروف بات سنی ہوگی، جو لوگ باہر رہتے ہیں کہتے ہیں ایسی سبزی تو ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں ملتی۔ یہ کہاں جاتی ہے؟ یہ ان غریبوں کے ہاتھوں سے آ کے وہ نہیں بیچ سکتے، سائنڈ ہوتے ہیں یہ اگریمنٹس کہ یہ فصل جو اگری ہے اپنے ملک میں نہیں بکے گی۔ کپڑا بنتا ہے، ملیں ہیں ایسی بڑی بڑی، کپڑا بنتا ہے سیدھا باہر جائے گا، وہ چیزیں جن ملکوں میں بنتی ہیں وہاں سے باہر آ جاتی ہیں۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی، ایک اور ملک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، उनकी ज़मीनें जो हैं वो ये बहुत उगती है वहाँ, जैसे चाय की पत्ती कह लें या कुछ चॉकलेट्स वगैरह का जो मटेरियल है उनके मुल्क में नहीं होता, वहाँ बेचना बैंड है और वो बड़ी ताकतों के हाथों में जाता है। क्यों? और फिर वहाँ से हम उसको मेड इन फलां का लेबल लेके फिर हम अपने मुल्कों में लाते हैं। ये सब एक खन चक्कर है। और मुसलमान कठपुतली बने हुए क्यों? कि वलौ मकामुल कुरान। हमारे सारे मसलों का हल यही है। जब कोई ऐसी आफात आती हैं आसमानी तो लोग कहते हैं लो अब हम अगर कुछ भेजेंगे भी तो हमें तो ये भी नहीं पता कि उन गरीबों को मिलेगा भी कि नहीं। आप सोच सकते हैं कि जहाँ इतनी घर में लड़ाइयाँ हों कि बाप बच्चों पे एतमाद नहीं कर रहा, बच्चे बाप पे नहीं कर रहे, शौहर बीवी पे नहीं, बीवी शौहर पे नहीं कर रही, क्या उस घर में अमन चैन होगा? सिर्फ आप 6 लोग हैं घर में, 4 बच्चे और मियाँ बीवी, हर बंदा दूसरे से बेजार है या बदगुमान है, क्या उस घर में कभी खुशी आएगी? शौहर कहेगा बीवी को, देखा तुमने सारी अच्छी बोटियाँ खुद ही खा ली होंगी ना, मेरे आगे ये गर्दन की बोटी रख दी। और बच्चे कहेंगे देखा अम्मा हमें तो पता नहीं क्या दे देती हैं और ख़ुद खाती हैं। बताएं वो घर जहन्नुम होगा कि नहीं? इस वक्त हमारी ज़िंदगियां जहन्नुम क्यों बनी हुई हैं? हमारे दिल खोटे हो चुके हैं। और दिल खोटा कब होता है? जब अल्लाह की किताब रूह के बग़ैर दुनिया में बस नाफ़िज़ धूम है। अब देखिएगा रमज़ान में शोर गुल वाह सुभान अल्लाह कुरान इतना इफ्तारियाँ जे वो, खुश हो गए। एक साल के लिए अल्लाह को हमने इतनी फीस दे दी है कि अगले साल तक के लिए काफ़ी होगी। नहीं, इसको नाफिज करो। ये 5 फुट के बदन पे अगर हम नाफिज करें, अब ये सारी बातें सुन के आप कहते हैं हाय हम क्या करें, कभी हमें कोई एक दिन के लिए सदर बना दे, कोई एक दिन के लिए वजीर बना दे, क्या होगा? उसी दिन आप कत्ल कर दिए जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। ये इकामत कहाँ से चलती है? आयत के नाते से देख लें। हम कहते हैं कि कल एक ऐलान आ जाए, खबर आ जाए, शह सुर्खी जिसको कहते हैं कि जी नाम ले लेते अपने मुल्क का, कोई हर्ज नहीं है, या किसी और का भी ले ले, कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। मिसाल है, हमारा दिल तो यही कह रहा होता है ना, कोई मर्द मोमिन आए और कोई मुजाहिद पहाड़ों में से निकले, हाथ में तलवार हो और के पीछे हो जाओ और इसको मार उसको मार या कुछ भी करके वो आके ऐलान कर दे। इज़ इट पॉसिबल? तो उसका ऐलान बाद में ख़त्म होगा, खबर दूसरी होगी कि नामालूम लोगों ने उनको कत्ल कर दिया। कभी भी बड़े लेवल से होते हुए छोटे लेवल पे किताब नाफिस नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने पहले जाके किताब नहीं नाफिस की थी, पहले फ़र्द पे काम किया था, अफराद से। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आपके मुल्क में 1,00,000 लोग हैं बिलफर्ज, आप चाहते हैं कि यहाँ कुरान नाफिस हो, आप उसको भी छोड़ दें, आप जहाँ रहते हैं उसी को देख लें, जिस इलाके में आप रहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि यहाँ इस्लाम का निफाज हो। हम तो भी इस्लामी सजाओं की बात ही नहीं कर पाते, खौफ आता है सोच के, हाय कटे हुए हाथ दिखते हैं उस वक्त हमें लोगों के, सूली पे चढ़े हुए लोग दिखते हैं। हालांकि जब इस्लाम नाफिज होता है तो दिल का भी चैन और दिल की भी खुशी, औलादों की आंखों में माँ बाप के लिए आजजी होती है, शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए मोहब्बत का पैगाम होते हैं। सच्चा निफाज देख लीजिए, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ लें, वो असर होगा आपके ऊपर भी जो उस दौर में था। करें हम क्या? 1,00,000 लोग हैं ना, उनको डिवाइड करके हर बंदे के ऊपर कुछ किसी को मुकर्रर करें, उनके दिल में कुरान किताब तालीम दी जाए, उनको समझ आए दीन है क्या। देखिए आप लोगों को दीन की तबलीग की तरफ तो बुलाते हैं लेकिन आपको दीन नहीं उनको बताते, ये कैसा दीन फैलेगा? आप खुद सोचें कि जब मुझे ही नहीं पता कि कुरान में क्या है, मैं आपको पढ़ाने बैठी हूँ और मैं आऊँ और मैं कहूँ सूरत मायदा की आयत को पढ़ने का ये फ़ायदा, इसका ये सवाब, इसके एक लफ्ज़ की इतनी नेकियाँ, और मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि इस आयत का मकसद क्या है, मुश्किल होगा ना। तो ज़रूरत है इस वक्त जो जिहाद, और इंशाल्लाह ये होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अब दुनिया दोबारा पलट रही है, जब कोई बहुत चीज़ फैल जाती है ना फिर पलटती है, कहते हैं ना रात ज़्यादा गहरी होती है तो फिर रोशनी आती है। इस वक्त अब इंसानियत ने सारे ही इज़्म आज़मा लिए हैं, कम्युनिज़्म फेल हो चुका, सोशलिज़्म फेल हो चुका, फलाइज़म, अब ये डेमोक्रेटिक सिस्टम भी एक किस्म का फेल हो चुका है, सिर्फ ये झूठे सहारों पे खड़ा है। आने वाले अदवार में लोग अब खुद इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं इंशाल्लाह, जो छोटे छोटे ग्रोहों में, अब आप कुरान सीख रहे हैं यहाँ ये ग्रोह, अगर आप उस तरह सीख सकें जो सीखने का हक़ है, दें अपना दिल दिमाग वक्त पूरी सोच दें, इसका हक़ दें, कट्टा पट्टा नहीं, टूटा फूटा नहीं, तर्स खाता हुआ नहीं, मुजाहिद। आप इस वक्त असल में अपने इस इलाके के मुजाहिद हैं। अगर कहीं और बिलफर्ज इस तरह तालीम नहीं हो रही, या अगर इसी तरह की कोई तालीम कोई और किसी जगह दे रहा है जिसमें दिल दिमाग और रूह साथ चल के कुरान चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपके ही भाई हैं। जब ये छोटे छोटे हल्के होंगे, आपने यहाँ से जब उठना है तो आपने फिर अपने दूसरे लोगों तक ये बात पहुँचानी है। ये छोटे छोटे जौहर मिलते जाएंगे तो एक बड़ा दरिया बनेगा और दरिया फिर समंदर में मिलेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को छोड़ के सिर्फ आप अपनी ज़ात और अपने घर पर काम करना शुरू करें। घर पर भी उस वक़्त तक नहीं आप कुरान नाफिज़ कर सकते जब तक आपकी अपनी ज़ात पर नहीं होता, ताना मिलेगा, कहेंगे ये सिखाता है तुम्हारा दीन, और वो फिर और ही खुद देखेंगे। इस पर हम पीछे देख चुके हैं, वला तखाफो न लो मतल आई, तो अल्लाह ताला से दुआ करें ये सोच आ जाए। ये कोई मौजज़ा नहीं होगा, याद रखिए, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगी। एक शक्ल जाएगी, दूसरी आ जाएगी। लोग कहते हैं हुक्मरानों को हटा क्यों नहीं देते, कर दें हटाएं, उससे भी अच्छा आ जाएगा माशाल्लाह। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता जब तक निज़ाम ना बदलें। पॉलिसीज़ ख़राब होती है ना जिन इदारों की, तो वो सदर वज़ीर बदलते भी जाएं, उनके लीडर्स, उनके इमाम और उनके जो भी नाज़िम है बदलते भी जाएंगे, ख़राबी फिर बढ़ेगी। हम सब किसी पे ना बात करें, सिर्फ़ अपने आप को देखें, और यकीन करें मैं अपने आप को हर वक्त इस गम के अंदर अज़ुर्दा महसूस करती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं इसमें कमी ना रह जाए, इसमें कोताही ना रह जाए। अगर ये चेहरे जो माशाल्लाह इस वक्त एक सोच लेके बैठे हैं, अगर इनकी पूरी तरबियत ना हो, ये तो पता नहीं क्या फैलाएंगे। और आपके हाय हम सीख ही नहीं पा रहे, अब 4-5 माह तो हो गए हैं, अब नहीं सीखा, आगे नहीं होगा, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने पिछले 6 पारों से पीछे की ज़िंदगी देखें, उससे लेके अगर आज सिर्फ 5% भी कुरान और सुन्नत आपकी ज़िंदगी में कायम हो गया ना, तो मुबारक हो आपको। और बच्चा शुरू में नहीं बढ़ता हुआ दिखता, लेकिन जब बढ़ता है तो फिर एकदम उसका कद बढ़ता है। इंशाल्लाह ये कुरान जितना आपके अंदर जाएगा, आपका दिल खुलेगा, आपको ज़िंदगी का मकसद समझ आएगा। और अगर कोई ये समझ के भी पलटता है तो फिर वो इस चीज़ की डिक्लेरेशन करता है कि बस दैट्स ओके, मुझे बस 5% पे ही रहना है, मुझे नहीं जाना ऊपर। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ख़ताओं को माफ़ करे और अल्लाह के ये वादे हम अपनी ज़िंदगी में देखें। और यकीन करें ये वादे आसमान ने भी देखे पूरे होते हुए और ज़मीन ने भी, कब? दौरे फारूकी में। कहते हैं कि लोग ज़कात की पोटलियाँ ले ले के फिरते थे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। मैंने इनकी बात क्यों की? इसलिए कि अल्लाह के नबी के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नाफिज़ हुआ। सबसे पहला जो कुरान नाफिज़ हुआ था ना मुल्की सतह पे या अफराद की सतह पे, वो अल्लाह के नबी का दौर था, फिर अबू बकर का दौर, फिर उमर का दौर, पीछे हम फितना इर्तदाद पढ़ चुके। सिर्फ ज़कात के मुनकरीन, इनको पीछे कर दो, इतनी दो टॉक पॉलिसीज होती, एक रूल नहीं माना हटाओ इसको पीछे, वार्निंग दो नहीं दी हटाओ इसको, दूसरा आ जाएगा। अल्लाह लेके आता है, कोई बंदा नहीं लाता, अल्लाह लाता है, लेकिन क्वालिटी को नहीं ख़राब किया। अगर अबू बकर उस वक्त खाए नहीं, नया नया सदमा सहा हुआ है, नहीं मान लो, चलो आज ज़कात नहीं, अच्छा थोड़ी दे दो, 2.5% ना दो, 1.5% दे दो, खबरदार नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ लड़ने। जब वो लीडर उठा सारे चल पड़े। इस वक्त इस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी ज़रूरत है। हमारे सारे काम नाकाम हो जाते हैं लीडरशिप की कमज़ोरी की वजह से। हम पूरे इखलास, पूरी सच्चाई, पूरी मेहनत के बावजूद वो नतायज नहीं ले पाते अपनी लीडरशिप की कमज़ोरी की वजह से। और अबू बकर सिद्दीक के बाद उम्र फारूक का दौर था, और ये अब दोबारा भी होगा। ये भी मैं आपको पेशन गोई भी बता दूँ कुरान और सुन्नत की। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और वो जो मामलात होंगे सियासी किस्म के वो निबट जाएंगे। पहले दज्जाल मर जाएगा, यहूद उनके हाथों मर जाएंगे, वो शादी करेंगे, वो सब कुछ वो मैं स्किप करती हूँ। उसके बाद अकामुल कुरान का काम ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में होगा। यानी ये छोटी छोटी कोशिशें जब शुरू हुई हैं ना दुनिया में इल्म और तालीम की सूरत में, ये इंशाल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से पूरे तकमील पर होगी। फिर पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी कि जहाँ लोगों को इस्लाम ना दिखे। और फिर आसमान और ज़मीन जो बरकतें उगलेगा, एक अनार पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा, एक बकरी का दूध, ये अब रिवायतें सुनी हुई आप लोगों ने भी, यानी इतनी बरकत होगी उस वक़्त कि थोड़ी सी चीज़ में इतनी बरकत हो जाएगी। ये हमने बरकतों को रोका हुआ, यकीन कर किसी की एड से कुछ भी नहीं बनेगा हमारे मुल्कों का। आप यहाँ से कंटेनर भर के भेजें कपड़ों के, खानों के, जूतों के, 2-4 दिन की बात है। जब अल्लाह किसी को पकड़ लेता है किसी चीज़ पे, तो फिर इंसानों से पूरी नहीं पड़ती। वही बात हज़रत उमर अली कि कैसे उन्होंने अल्लाह ताला के नबी के दौर में कहत पड़ा जब, तो उन्होंने एक गैर मुस्लिम हुकूमत से मदद की ख्वाहिश कर ली, और उसके बाद क्या हुआ वाक़या सुना चुकी हैं आप लोगों को पीछे। तो ज़रूरत है इस बात की कि बेसिक्स को दे। आप लोगों को खाना देते हैं ना, आप उनके लिए कुरान के लिए इख्तमाम करें। आज हम खाने पे खर्च करने पे लाखों लगा देते हैं। मैंने देखा सबसे ज़्यादा खुला दिल हमारा खाना खिलाने पे, अल्हम्दुलिल्लाह घरों में भी, मेहमानों को, शादियों में, मंगनियों में, दीन के नाम पे भी बहुत खाना खाते हैं। तड़प ये पैदा करें अपनी ज़िंदगी में कि लोगों को मैंने इस किताब का, इस रूह का खाना खिलाना है। इससे जुड़ जाएंगे, बात होगी। और ये छोटी छोटी कोशिशें, कुछ लोग जो लुढ़कते लुढ़कते आते हैं कभी दर्स सुन लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले दर्जे पे आ गया काम उल कुरान और सुन्नत के। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता बार दर्स अटेंड करने वाले बन जाते हैं, वो दूसरे दर्जे पे आ गए। फिर वो उसके बाद किसी ऐसी जगह पे जैसे बाकायदा तालीम और तदरीस है वहाँ के लिसनर्स बन के बैठ जाते हैं, ये थर्ड स्टेप है। और जब वो कुछ दिन इतने अच्छे लोगों को देखते हैं कि हाय ये रोज़ पढ़ते हैं, सबक सुनाते हैं, याद करते हैं, चलो हम भी इसमें आते हैं, और फिर वो दिल में पड़ता है, फिर वहाँ से आके ना जाए। देखिए पीछे से आगे आप जाते हैं ना, जैसे पहले स्टेप से भी बताया, ये इस नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई आखिरी दर्जे से पीछे जाए, नहीं रेगुलर हूँ बहुत मुश्किल है, लिसनर बन जाता हूँ, बैठूँगा बस सबक नहीं सुनाऊँगा, आप समझ लें आपने अपने ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। आप कहते हैं नहीं सबक नहीं सुनाऊंगी बस ठीक, अच्छा आप रोज़ नहीं आऊँगी, अच्छा सिर्फ तफसीर पे आऊँगी, इतना बैक ट्रैक होता है चुपके चुपके, इंसान सोच भी नहीं सकता और कहाँ जाता है। और मैं तो सिर्फ गवाही देने के लिए ये कह सकती हूँ कि अल्लाह की किताब सामने खड़ी है, पढ़िए। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं ज़िंदगी में बरकतें दे देता हूँ, ऊपर से भी खाएंगे नीचे से खाएंगे। मैं कहती हूँ अगर सच्चे दिल से हम अपने कुरान और सुन्नत के ताल्लुक़ को देख लें, मैंने आजमाया जितना आपकी ज़िंदगी में कुरान से और इस्लाम से कुर्बत और अमल बढ़ता है, आपका दिल वाकई गनी हो जाता है। ये बरकतें आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, वक्त में बरकतें, सेहत में बरकतें, आपका दिल बेगम हो जाता है, बेखौफ हो जाते हैं इस तरीके से कि वाकई अल्लाह तेरा वादा है। कि कभी कभी मैं सोचती हूँ अल्लाह हम इतने गुनाहगार हैं, मैं अपने गुनाह तो खुद जानती हूँ, आपको तो मैं सिर्फ घंटे 2-3 के लिए दिखती हूँ ना, बाकी 20 घंटे मैं खुद अकेली होती हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है मैं कैसी हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ अल्लाह हम इतने गुनाहगार होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में इतनी बरकतें, अपने दिल में इतना सुकून, इतना इत्मीनान देखते हैं। मेरा दिल करता है मैं झांक के देखूँ अल्लाह के नबी के दिल में कितना सुकून था, अबू बकर के दिल में कितना सुकून था, उमर फ़ारूक के दिल में कितनी खुशी थी, कि वो तो ईमान और अमल के अंदर पक्के थे। ये अल्लाह के वादे आज भी आप महसूस कर सकते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिम अल-मलाइका, फरिश्तों का नज़ूल होता है। ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गम खौफ से बिल्कुल बंदा बेनियाज होता है। इसके बरक्स पलटें पाए गम, डिप्रेशन, दुख, बीमारियाँ, खाम खा की बातें, भाग दौड़ ज़्यादा, खुलासा वही खाते एंड ऑफ द डे आप भी वही हैं जो वो खा रहा है जो सारा दिन बैठ के किचन में खाना पका रहा है। यकीन करें ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। सिर्फ आप अपनी कोशिशों का रुख मुतय्यन करते हैं, नसीब आपका उससे भी अच्छा है। पहनते आप भी वही है जो सारा दिन बाजार में जाके पहनता है, फ़र्क है। एक ने सारा दिन 4 नमाजें छोड़ के एक जोड़ा बनाया, दूसरे को अल्लाह ने पता नहीं कहाँ से दिलवा दिया, जिसकी ख्वाहिश भी नहीं थी, हसरत नहीं थी, वो किसी के जज्बे की खुशी के लिए भी पहन लेगा, वो किसी अपने की मोहब्बत का भी लिया हुआ पहन लेगा, एंड ऑफ रिज़ल्ट एक ही है दोनों का। फ़र्क क्या है, हम रास्ते मुंतखब करते हैं और अल्लाह ने हम सब को खुला मैदान दे दिया। अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि हमारी ज़िंदगियों में कुरान और सुन्नत कायम हो जाए, हमारे घरों में कायम हो जाए, हमारे ख़ानदानों में कायम हो जाए। और ये कब कायम होती है, पिछले सबक से इसको जोड़ ले, जब वला तखाफून लौमत लाइम पे आएंगे। आप कहते हैं मैंने फ़ैसला किया, मैंने अपने बच्चों की शादी बिल्कुल सीधे तरीके से करनी है, सुन्नत के मुताबिक करनी है। ये आपका एक फ़ैसला था, आप कहते हैं मैं अपने बच्चों की शादी में सुन्नत को कायम करूँगी। ये कायम तो ऐसे ही होगी ना, कुरान को कायम करूँगी। अब ख़ानदान कुछ भी गए, कंजूस हो गए, भूखे नंगे हो गए, हु केयर्स, वला तखाफून लौमत लाइम। आप कहते हैं कोई मर गया, मैं उसकी कोई खिलाफ़ शरत सुन्नत तरीका नहीं रखूँगी उसके मरने के बाद। लोग बातें करें, लोग आपके फातिहा ना दुरूद, मर गया मरदूद, पता नहीं क्या कुछ बातें सुनी हुई हैं लोगों से, जो कहते हैं मैंने सोच लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अकामुल कुरान व सुन्ना करना है। सफ़र में मुश्किल नहीं रहता अगर पाँव जमे हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस्तकामत दे और अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए इन चीज़ों पर अमल करें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ भी कर दे। यहाँ पे सबक पूरा होता है, तिलावत सुनेंगे।
ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما